हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 2406। अपने मन में ये सब सोचते हुए सुनैना को दूसरी तरफ से रवि की आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी सोच से बाहर आकर उससे पूछी, कहाँ हो तुम? फिर स्वयं वहाँ चली गई। वहाँ पहुँचकर उसे पता चला कि अनय अभी अभी वहाँ से गया है। रवि ने उसे इस बारे में बताया। सुनैना ने सख्ती से पूछा, आखिर क्या हुआ है आदित्य को? वो इस वक्त कहाँ है? थोड़ा टालमोल करने के बाद रवि ने बताया, मैडम, वो सर नहीं चाहते थे कि आपको उनकी बीमारियों के बारे में पता चले। वो कभी भी अपना इलाज नहीं करवाते। ऐसा लगता है जैसे उन्हें जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस नाम के लिए ही जिंदा हैं। शट अप रवि, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों से तो आदित्य में इतने सारे बदलाव आए थे। उसने तो ड्रिंक करनी भी कम कर दी थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? सुनैना ने फिर से रवि को डांटते हुए कहा। रवि चुपचाप नीचे देखने लगा और उसने आगे कुछ नहीं कहा। सुनैना इस वक्त आदित्य को लेकर अपने मन में कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। इसीलिए जब रवि ने ये सब कुछ बोला तो सुनैना को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि इस वक्त आदित्य के न मिलने की वजह से वो भी थोड़ी परेशान थी। सुनैना ने रवि से पूछा, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम कितनी देर पहले आदित्य के साथ यहाँ पर आए थे और वो कहाँ जा सकता है? अभी 2 घंटे पहले हम दोनों साथ में यहाँ पर आए थे, लेकिन सर ने मुझे काम का बहाना बनाकर वहाँ से बाहर भेज दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब उनका प्लान है ताकि वो यहाँ से निकल पाएं। मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ गए होंगे, रवि ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा। सुनैना ने फ्रस्ट्रेशन से अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, ओ माय गॉड आदि, प्लीज प्लीज ऐसा वैसा कुछ भी मत करना और एक बार, बस एक बार मेरे बारे में सोच लेना। सुनैना वहाँ खड़ी हुई ये सोच रही थी कि आदित्य आखिर वहाँ से कहाँ जा सकता है। उसे एक बार लगा शायद आदित्य घर वापस चला गया होगा, इसलिए उसने गीता दी को कॉल करके इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है। ये बात सुनकर सुनैना एकदम निराश हो गई। ना चाहते हुए भी आदित्य को लेकर उसके मन में अजीब अजीब से बुरे ख्याल आने लगे। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो रवि के साथ वहाँ हॉस्पिटल गेट के बाहर खड़ी हुई थी। तभी रवि का मोबाइल फोन रिंग हुआ। सुनैना बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। रवि उसके सामने ही कॉल रिसीव करके बात की और हाँ, अच्छा, ओके बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रवि के कॉल डिस्कनेक्ट करते ही सुनैना कुछ पूछ पाती इससे पहले ही रवि ने बताया, मैम, आदि सर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। अनय सर का फ़ोन था। उन्हें कहीं से पता चला है कि आदित्य आउट ऑफ कंट्री जा रहा है और वो उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। वॉट, आउट ऑफ कंट्री? इतनी बीमारियों के साथ? आदित्य का दिमाग भी खराब है। वो आखिर कर क्या रहा है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे रेस्ट करना चाहिए, और वो पता नहीं कहाँ जा रहा है? सुनैना एकदम हैरानी से बोली। रवि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर सुनैना थोड़ी देर सोचते हुए बोली, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? इसका मतलब वो किसी काम से तो नहीं जा रहा है? तो फिर? रवि की तरफ देखते हुए सुनैना ने ये सवाल किया। रवि ने अपने कंधे उचका दिए, क्योंकि उसे इस बात की शायद कोई भी भनक नहीं थी। सुनैना इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई कि कहीं आदित्य उसे हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं जा रहा है। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया, नहीं, आदित्य तो मुझसे बहुत प्यार करता है। अभी पिछली रात ही हम दोनों ने एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस किया था। ऐसे में आदित्य मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सुनैना अपने दिल को ये बात समझा रही थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ और ही कह रहा था। फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को स्थिर किया और रवि से अपने साथ एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। रवि ने कैब बुक की और वो दोनों हॉस्पिटल से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 4:06। दूसरी तरफ अक्षत और नैना सुनैना से मिलने के लिए उसके घर के लिए निकले। जब वे दोनों घर आए तो उन्हें पता चला कि घर पर कोई नहीं है। वहाँ पर सिर्फ उनके घर में काम करने वाली गीता दी थीं। नैना ने गीता दी से इस बारे में पूछा। गीता दी ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि इस वक्त सुनैना और आदित्य कहाँ होंगे। गीता दी की ये बात सुनकर नैना ने थोड़ी मायूसी से अक्षत की तरफ देखा और बोली, अब हम क्या करें? यहाँ पर रुककर उनके वापस आने का वेट करें या फिर वापस चलें? इतना बोलते हुए वे दोनों आदित्य के घर से बाहर निकल आए और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। नैना, तुम्हें आने से कम एक बार सुनैना को कॉल कर लेना चाहिए था। अक्षत भी थोड़ी निराशा से बोला। नैना को अगले दिन आउटडोर शूटिंग के लिए निकलना था, इसलिए आज उसका डे ऑफ था, पैकिंग और बाकी जरूरी काम के लिए। लेकिन अक्षत अपनी शूटिंग पोस्टपोन करके उसके साथ यहाँ आया था और फिर वे दोनों सुनैना और आदित्य से मिल भी नहीं पाए। उसे ये सब कुछ टाइम वेस्ट लगा। आई एम सॉरी यार, मेरी ही गलती है। मैं मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हो गई। मैंने सोचा उसे सरप्राइज दूंगी तो अच्छा लगेगा। बस इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया। वैसे हमें इस बारे में सोचना चाहिए, सुनैना कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो अब सिंघानिया होटल इंडस्ट्रीज की ओनर और सीईओ बन चुकी है, तो उसके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और शायद इसीलिए वो ऑफिस या फिर काम से कहीं गई होगी। नैना ने अक्षत की बात पर इतना सब कुछ सोचते हुए कहा। नैना की ये सारी बातें सुनकर अक्षत को लगा कि शायद नैना गिल्ट में है, इसीलिए सफाई देते हुए ये सारी बात बोल रही है। इसलिए अक्षत ने कहा, अरे यार, मैं ये नहीं बोल रहा था। और हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छा एक काम करो, कम से कम अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो अभी एक बार सुनैना को कॉल कर लो, उसके बाद वापस चलेंगे। कार के सामने खड़े होकर वे दोनों ये सारी बातें कर रहे थे। आदित्य का घर वैसे भी बहुत ही सुनसान इलाके में है और वहाँ पर इतने लोग नहीं होते कि कोई भी अक्षत के पीछे पड़े। एक तरह से वो एरिया अकेले रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आदित्य ने कुछ सोच समझ कर ही वो जगह चुनी होगी, क्योंकि उसे खुद भी लोगों में रहना और भीड़ भाड़ वाले इलाके में पसंद नहीं है। अक्षत की बात पर सिर हिलाते हुए नैना ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें सुनैना का नंबर सर्च करने लगी। सुनैना का नंबर मिलते ही नैना ने उसका नंबर डायल किया। सुनैना उस वक्त कैब में बैठी हुई थी और रवि के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसने सोचा कि शायद आदित्य ने कॉल बैक किया होगा। वैसे इस बात की उम्मीद कम ही थी, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर नाम पढ़ने से पहले तक सुनैना मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि आदित्य का कॉल हो और किसी तरह बस उसकी एक बार आदित्य से बात हो जाए, फिर वो कैसे भी करके आदित्य को समझा लेगी। ये सोचते हुए सुनैना की नज़र मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी बहन नैना का फोन कॉल है। नैना का नाम स्क्रीन पर देखकर सुनैना ने अपने मन में सोचा, नैना दी का कॉल, क्या करूं, रिसीव करूं या नहीं? उन्हें तो मेरी आवाज़ से ही समझ आ जाएगा और मैं उन्हें इस बारे में बताऊं या नहीं? नैना का नाम देखकर सुनैना ये सब कुछ सोचने लगी और कॉल रिसीव करें या नहीं इस बात को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वो कॉल रिसीव नहीं करेगी तो नैना भी उसे लेकर उसी तरह परेशान हो जाएगी जैसे इस वक्त वो आदित्य के लिए परेशान है, इसलिए उसने कॉल रिसीव कर ली।
हेलो नैना दी, क्या हुआ, आज अपनी सोनू की याद कैसे आ गई आपको? सुनैना ने एकदम नॉर्मल टोन में कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आवाज़ से नैना को पता चले कि वो किसी बात को लेकर परेशान है और फिर नैना भी उसके लिए परेशान हो जाए। अरे सोनू, क्या हुआ है तुझे, इस तरह से क्यों बोल रही है तू? मुझे तो हमेशा ही तू याद रहती है, वह बस अभी कुछ दिनों से ही तो बात नहीं हुई हमारी। लेकिन तूने भी तो कॉल नहीं किया ना? पर मैं तो शिकायत नहीं कर रही हूँ, नैना ने उसकी बात पर कहा। सुनैना को भी लगा शायद उसने थोड़ा ताने मारने वाले अंदाज में ये बात बोल दी, तो फिर वो जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे दी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ, आप बताओ ना, आप कैसे हो और अक्षत कहाँ पर है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता आप उसके साथ रहती हो। उसके साथ रहती ही नहीं हूँ, वह मेरा। इतना बोलते हुए नैना की नज़र अक्षत पर पड़ी, जो उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। तो फिर नैना ने भी जल्दी से बात बदलते हुए कहा, आई मीन, हम दोनों, तुझे तो पता ही है ना हमारे बारे में, तो फिर क्यों इस तरह बोल रही है? वैसे इस वक्त भी वो मेरे साथ है और हम दोनों यहाँ पर तेरे घर के बाहर खड़े हैं। एक्चुअली हमने टीवी पर वो न्यूज़ देखी थी जिसमें तुम। नैना की इतनी बात सुनकर ही सुनैना समझ गई कि आखिर नैना किस बारे में बात कर रही है और वो उससे मिलने क्यों आई है। आखिर वो उसकी बड़ी बहन है और उसकी फिक्र करती है, इसलिए इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद वो उससे मिलने तो आएगी ही, भले ही कुछ देर बाद, लेकिन वो आई तो है। लेकिन सुनैना इस वक्त उससे नहीं मिल सकी और अक्षत भी वहाँ पर आया हुआ है। फिर भी सुनैना के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आदित्य है, इसलिए उसने थोड़ी मायूसी से कहा, आई एम रियली सॉरी दी, मैं घर से बाहर हूँ, आप आने से पहले एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देती तो मैं आपका वेट करती घर पर, लेकिन अभी सॉरी, मैं इस वक्त वापस भी नहीं आ सकती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, अब तुम पहले की तरह हर वक्त फ्री नहीं हो, आखिर इतनी सारी जिम्मेदारियां जो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गई हैं, मुझे एक बार कॉल करके आना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ सुनैना, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारे और आदित्य के बीच सब ठीक है या नहीं? नैना ने थोड़ी दबी हुई आवाज़ में पूछा। उसका ये सवाल सुनकर सुनैना एकदम चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया वो आखिर नैना से क्या बताए, क्योंकि उसके और आदित्य के बीच में जो कुछ भी है उसे लेकर तो इस वक्त वो खुद भी श्योर नहीं है, और यहाँ तक उसे पता भी नहीं है कि उसका पति आदित्य आखिर इस वक्त कहाँ पर है। ये सब कुछ सोचते हुए सुनैना थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली, तो दूसरी तरफ से नैना की आवाज़ फिर से आई, सोनू क्या हुआ, तो सुन रही है ना मेरी बात? क्रमशः